पृष्ठ संख्या 209, चतुर्थ अध्याय, प्रतीकों का तुलनात्मक अध्ययन। प्रतीक। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतीक का अधुनातन अर्थ 19वीं शताब्दी में फ्रांस में उद्भूत तथा समस्त पाश्चात्य साहित्य में संक्रमित स्कूल ऑफ सिंबोलिज्म से प्रभावित है, परंतु प्रतीक शब्द बहुत पुरातन है और वेदों में भी प्रयुक्त मिलता है। दधाते ये अमृते सुप्रतीके, एक मंत्र के भाष्य में सायण ने इसका अर्थ रूप किया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 2 के अनुसार प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य अथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य अगोचर या अप्रस्तुत विषय का प्रतिविधान उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है। वाइडहेंड के शब्दों में प्रतीकवाद का उद्देश्य यह है कि किसी विशेष वस्तु को मस्तिष्क में इस प्रकार चित्रित किया जाए कि वह स्वयं आंखों से ओझल हो, परंतु किसी अन्य वस्तु के साथ उसके सादृश्य एवं सारूप्य से वह अभीष्ट चित्र मस्तिष्क में अंकित हो जाए। 3. प्रोफेसर शेम, प्रतीक शब्द की व्युत्पत्ति प्रति प्लस इण गतौ से कहते हैं। 4. तदनुसार प्रतीक का अर्थ वस्तु है जो अपनी मूल वस्तु में पहुंच सके अथवा वह चिन्ह जो मूल का परिचायक हो। हिंदी साहित्य कोश 5 में प्रतीक के संबंध में इस प्रकार लिखा है कि किसी अन्य स्तर के समानुरूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है। 1. ऋग्वेद 1:185-6, 2. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वॉल्यूम 21 पृष्ठ 700, 3. व्हाइटवेन सिंबोलिज्म इट्स मीन इंग एंड इफेक्ट पृष्ठ 98, 4. प्रोफेसर शेम, छायावाद के गौरव चिन्ह वाराणसी सन 1956 पृष्ठ 226, 5. हिंदी साहित्य कोश संवत 2015 विक्रम बनारस पृष्ठ 471, पृष्ठ संख्या 210. अमूर्त अदृश्य अश्रव्य अप्रस्तुत विषय का प्रतीक प्रति विधान मूर्त दृश्य श्रव्य प्रस्तुत विषय द्वारा करता है, जैसे अदृश्य या अप्रस्तुत ईश्वर देवता अथवा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व उसकी प्रतिमा या अन्य कोई वस्तु कर सकती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में प्रतीक वह विशेष संकेत चिन्ह होता है जिसका प्रयोग स्वेच्छा से या परंपरा से किसी अन्य अर्थ के प्रतिनिधित्व के लिए होता है। 1. साधारणतया कहा जा सकता है कि प्रतीकों के माध्यम से किसी विषय का प्रतिविधान करना प्रतीकवाद है। अपने मौलिक अर्थ में प्रतीकवाद किसी व्यक्ति विषय घटना अथवा क्रिया की ओर ध्यान करने वाले पदार्थों और चिन्हों तक ही सीमित था, किंतु उसके अर्थ के क्रमिक विस्तार की प्रक्रिया में उसके अंतर्गत रुकने और चलते जाने का संकेत देने वाले लाल और हरे रंगों जैसे तुच्छ पदार्थों से लेकर राष्ट्रों की ध्वजाएं, धार्मिक कर्मकांड के विविध उपकरण तक सम्मिलित हो गए हैं। उद्देश्य। साहित्य के क्षेत्र में प्रतीकवाद को विशेष महत्व प्राप्त है। प्रतीकों द्वारा भावाभिव्यक्ति को और अधिक स्पष्ट, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। प्रतीकों के प्रयोग से मुख्यतः इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। 1. सूक्ष्म भाव को स्थूल रूप में प्रस्तुत करना, इससे अगोचर गोचर रूप में तथा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हो जाता है। इससे पाठक को बिंब ग्रहण में सहायता मिलती है, जैसे रात्रि को दुख का प्रतीक बनाना या दिन को सुख का। 2. अपरिचित वस्तु का परिचय किसी परिचित आधार पर देना, यथा तुलसीदास ज्ञान और भक्ति का भेद बताते हुए एक को दीपक के रूप में और दूसरी को चिंतामणि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 3. अप्रस्तुत का वर्णन करके पाठक के हृदय में प्रस्तुत के विषय में जिज्ञासा जागृत करना, जैसे कबीर का यह कथन, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। 1. डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, साहित्य विज्ञान, चंडीगढ़, 1963-64, पृष्ठ 328, पृष्ठ संख्या 211। 4. विषय वस्तु की व्यंजना अभिधा में न करके ध्वनि या व्यंग रूप में करना, यथा बिहारी के इस दोहे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल में कमल की कली अस्फुट यौवन बाला के प्रतीक है। 5. एक ही शब्द, वाक्य, प्रसंग, कहानी या काव्य के द्वारा दो विषयों का प्रतिपादन एक साथ करना, जैसे कामायनी में मनु श्रद्धा के प्रतीकार्थों के द्वारा लौकिक और आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति एक साथ की गई है। प्रतीक प्रकृति फारसी काव्य। प्रत्येक साहित्य के अपने विशेष प्रतीक होते हैं, जिनके फलस्वरूप यह साहित्य अपनी मौलिकता की पताका फहरा सकता है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकता है। फारसी काव्य में गुल व बुलबुल, शमा व परमाना, सर्व व कुमारी, फाख्ता को विशेष आदर प्राप्त है। इसका कारण यह है कि ईरान देश प्रकृति देवी का सुरम्य क्रीड़ा स्थल है। वहाँ के वन, उपवन, सरित, सरोवर, झील, प्रपात, कुंज, निकुंज इत्यादि सभी मनोहर हैं। यद्यपि रैंडल्स एक के विचारानुसार निश्चय ही यह निष्कर्ष युक्तियुक्त नहीं कि प्रकृति का सुंदर चित्रण करने के लिए कवि अवश्य ही प्रकृति की गोद में पला हो, तथापि प्रकृति का प्रभाव एक कवि या लेखक पर अवश्य पड़ता है। सुमित्रानंदन पंत तो स्पष्टतः स्वीकार करते हैं कि वे काव्य प्रेरणा के लिए प्रकृति के ऋणी हैं। आधुनिक कवि नामक ग्रंथ के पर्यालोचन में वे लिखते हैं, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। दो, एक रैंडल्स ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन इंग्लिश पोएट्री बिटवीन पोप एंड वर्ड्सवर्थ, चिकागो, सन 1896, पृष्ठ 331। दो, सुमित्रानंदन पंत आधुनिक कवि पर्यालोचन प्रयाग, पृष्ठ 1, पृष्ठ संख्या 212। मौलाना शिबली एक के मतानुसार मुल्क की आबो हवा सरसब्जी और शादाबी का असर ख्यालात पर पड़ता है और इस जरिया से इंशा परदाजी और शाहरी तक पहुंचता है। अरब शायरों के कलाम देखो तो पहाड़, सहरा, जंगल, बियावान, दुश्वार गुजार रास्ते, मिटे हुए खंडहर, बबूलों के झुंड, पहाड़ी झाड़ियाँ, ये चीज़ें उनकी शायरी का सरमाया हैं। लेकिन जब अरब बगदाद में पहुँचे तो उनका कलाम चमनस्तान और सुम्बुलस्तान बन गया। ईरान एक कुदरती चमनजार है, मुल्क फूलों से भरा पड़ा है। कदम कदम पर आबे खां, सब्जाजार और आबशारे हैं। बाहर आई और तमाम सरजमीन तख्ता इजुमुद्दीन बन गई। बादे शहर के झोंके, खुशबुओं की लपट, सब्जा की लहक, बुलबुलों की चहक, ताउस की झंकार, आबशारों का शोर, वह समा है जो ईरान के सिवा और अब कहीं नजर नहीं आता। इसी प्रकार मौलाना आज़ाद का कथन है कि ईरान एक हरा भरा देश है जिसमें प्राकृतिक दृश्यों की अधिकता है। इनसे प्रभावित होकर कवि और लेखक लाला व गुल की जबान से बातें करते और सर्वे व शमशाद के प्रतीकों द्वारा हाले दिल खोलते हैं। दो, फारसी काव्य में गुल को सौंदर्य का उत्तम प्रतीक माना गया है और इसी संबंध से बाग, जो नाना प्रकार के फूलों का उद्गम स्थान है, फारसी कवियों की दृष्टि में सुंदरता का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। वे उसे भूमि पर स्वर्ग कल्पित करते हैं। यह अनुमान करना शायद कुछ गलत न होगा कि ईरान के बाग की कल्पना बहुत हद तक कुरान के स्वर्ग विषयक विचारों के अनुरूप है। एक, मौलाना शिबली, शेरुल अजम, भाग 4, लखनऊ, सन 1912 ईस्वी, पृष्ठ 215। दो, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सखुंदाने पारस, लाहौर, 7वां लेक्चर, पृष्ठ 168। निस्संदेह बाग गुल का स्थान है, उसकी जितनी प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं उससे कहीं अधिक गुल का गुणगान किया जाता है। फूल का, पृष्ठ संख्या 213, इससे अधिक क्या सौभाग्य होगा कि इसे प्रिय एक का प्रतीक माना जाता है। प्रायः प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत में उत्कर्ष का वर्णन होता है, इसीलिए जो गुण प्रिय में है उसे कहीं अधिक गुण पुष्प में हुए। ईरानियों का फूलों के प्रति अनुराग केवल उस समय ही न था जब शेख सादी ने अपने प्रख्यात ग्रंथ रत्न गुलिस्तान और बूस्तान गुल एवं गुलजार से संबंधित किए, अपितु आज भी हर ईरानी फूल पर वैसे ही आसक्त है और उपवन पर वैसे ही मुग्ध है जैसे कि जीवन के लिए साफ वायु, स्वच्छ जल एवं निर्मल अन्न को आवश्यकता अनिवार्य एवं अपरिहार्य है। इस प्रकार प्रत्येक ईरानी की दृष्टि में उपवन भी उनके जीवन के आवश्यक अंग हैं। दो, अतः फारसी कवि इन पर जान छिड़कते हैं। फारसी काव्य में फूलों में गुल और लाला को विशेष मान प्राप्त है। गुल को भारत में गुलाब कहा जाता है और अरब में इसे वर्द कहते हैं। गुले सुर्ख भी इसी फूल का नाम है। इस पर बुलबुल आसक्त होती है। जब बहार में बागों में गुलाब का साम्राज्य होता है तो बुलबुल मदमस्त हो जाती है। इस प्रसंग में मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि गुलाब की टहनी पर तो यह आलम होता है कि बुलबुल बोलती है, बोलती है, बोलती है, हद से ज़्यादा मस्त होती है तो फूल पर मुंह रख देती है और आंखें बंद करके जमजमा करके रह जाती है। तीन, एक, या रब आ नौगुले खंदा की सुपुर्दी बन मनश, दीवाने हाफिज लाहौर, काशीराम प्रेस, पृष्ठ 395। हे प्रभु, मुस्काते हुए ताज़ा गुलाब को तूने मुझे सौंपा है। यहाँ नौ गुले खंदा प्रतीक है प्रसन्न वदन प्रिय का। दो, क, श्री साइक्स, पर्शिया एंड इट्स पीपल, लंदन, सन 1910 ईस्वी, पृष्ठ 222-23। ख, प्रोफेसर ब्राउन, अ ईयर अमंग द पर्शियंस, कैम्ब्रिज, सन 1937 ईस्वी, पृष्ठ 87। तीन, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सखुंदाने पारस, लाहौर, पृष्ठ 181, पृष्ठ संख्या 214। साइक्स एक के कथनानुसार बुलबुल को जब पिंजरे में बंदी बना लिया जाता है तो उसके गान बहुत मादक होते हैं और गर्मियों में पिंजरे में गुलाब का ताज़ा फूल प्रायः लटका देते हैं। सुप्रसिद्ध कवि नज़ीरी ने भी इस ओर संकेत करते हुए लिखा है, हर्जा गुलेस्त बहरे नज़ीरी तर बगहेस्त, कह बुलबुलाने मस्त गमे आसिया खुरंद। दो, अर्थात जहाँ कहीं भी गुल प्रिय है नज़ीरी के लिए वहीं खुशी का स्थान है। मस्त बुलबुलें पिंजरे में बंद होते हुए भी लटके हुए गुल के सम्मुख अपने नीड की चिंता कब करती हैं। इंग्लिश कविता में भी बहुधा बुलबुल नाइटिंगेल की विशेष रूप से चर्चा की गई है। तीन, गुलाब के बाद सबसे अधिक जिस फूल की प्रशंसा फारसी के कवियों ने की है वह लाला है। लाला का रंग लाल और उसकी तह काली होती है। भारत में इसे पोस्त का लाल रंग का फूल कहते हैं। इसकी कई कोटियाँ हैं। सोसन भी बहुत प्रसिद्ध एवं प्रिय पुष्प है। इसकी 10 पत्तियां होती हैं। सारांश यह कि फारसी कवियों ने सूक्ष्माति सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रकृति के उपादानों को प्रतीक बनाकर की है। उनके लिए प्रकृति का सौंदर्य अक्षय भंडार ही नहीं, प्रेरणा का स्रोत, कल्पना का अद्भुत लोक, अनुभूति का अगाध सागर और विचारों की अटूट श्रृंखला है। एक, श्री साइक्स, पर्शिया एंड इट्स पीपल, लंदन, सन 1910 ईस्वी, पृष्ठ 252। दो, गजलियाते नज़ीरी, लाहौर, शेख मुबारक अली, पृष्ठ 75। तीन, श्री बोअस सी, बर्ड्स एंड बीस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, लंदन, पृष्ठ 13। इसे एक तत्ववेत्ता ही भलीभांति समझ सकता है, पृष्ठ संख्या 215। जाहिद जे सीरे नुख्ता ए सूफी चे आगाह अस्त, दर सेवा हाय चश्मे सनम बरहमन रसद। एक, अर्थात एकेश्वरवादी विरक्त सूफी के सूक्ष्म रहस्य को क्या जाने, मूर्ति की आंखों के हाव भाव ब्राह्मण ही जानता है। फारसी सूफी कवियों ने अपने गहन तथा गंभीर भावों को किस प्रकार प्रतीकों के माध्यम से व्यंजित किया इसका उल्लेख हम आगे करेंगे। प्रतीक प्रकृति हिंदी काव्य। ईरान देश से भी बढ़ चढ़कर भारतवर्ष प्रकृति का सुरम्य क्रीड़ा क्षेत्र है। इस सुंदर देश का प्राकृतिक सौंदर्य वर्णनातीत है। प्राकृतिक सुंदरता के दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुतः भारतवर्ष ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस मनोहर देश में प्रकृति श्री की सुषमा को मानो सजाया संवारा गया है। यहाँ के हिममंडित पर्वत, ताजे फूलों से भरी पूरी उपत्यकाएँ, कलकल निनादकारिणी सरिताएँ, अप्रतिहत गतिशाली निर्झर निर्मल नीर प्रवाहिनी झीलें आदि सभी मानव मन को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। उनकी ओर दृष्टि करते ही मनुपुत्र मानव उनका कृत दास बन जाता है। अतः हमारे कवियों ने प्रकृति प्रेम की ओर अपनी अगाध आस्था प्रकट की है। पंत जी लिखते हैं, छोड़ ध्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभंगों से कैसे बिंधवा दूं निज मृग मानस, भूल अभी से इस जग को। एक, गजलियाते नजीरी, लाहौर, शेख मुबारक अली, पृष्ठ 73। दो, श्री सुमित्रानंदन पंत, आधुनिक कवि, प्रयाग, संवत 1998, पृष्ठ 1। प्रकृति के अनंत रमणीय प्रसार में काव्योपयोगी असीम सौंदर्य, अगाध, पृष्ठ संख्या 216, माधुर्य, अगणित रंजनकारी ध्वनियाँ, आकर्षक वर्ण, रूप, आकृतियाँ आदि भरी पड़ी हैं। रूप माधुर्य के इस अक्षय भंडार से हमारा काव्य अपने को सदैव श्री संपन्न रखता है। उसमें प्रकृति का ग्रहण विभिन्न रूपों से होता है। पंत जी के शब्दों में प्रकृति निरीक्षण से मुझे अपनी भावनाओं की अभिव्यंजना में अधिक सहायता मिली है, कहीं उससे विचारों की भी प्रेरणा मिली है। प्राकृतिक चित्रों में प्रायः मैंने अपनी भावनाओं का सौंदर्य मिलाकर उन्हें ऐन्द्रिक चित्रण बनाया है। कभी कभी भावनाओं को ही प्राकृतिक सौंदर्य का लिबास पहना दिया है। एक, हिंदी साहित्य के कवि फारसी साहित्य के कवियों की भांति फूलों पर अत्यधिक रिझे हैं, क्योंकि फूल अपने दीप्ति, कांति, माधुर्य, कोमलता आदि से नेत्रों को सहज ही तृप्त करते हैं और अपनी भीनी, शीतल और मादक सुगंध से मस्त कर देते हैं। फूलों में से कमल को विशेष आदर दिया जाता है। लाल कमल रति का प्रतीक है और नील कमल में करुणा की भावना सन्निहित है। उदाहरणार्थ, नूर मोहम्मद ने कमल के प्रतीकार्थ से स्वप्न में आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की है। कमल एक लागा जलमाही, आधा बिकुसा आधा नाही, मधुकर एक आई रसलीना, लय रसवास गवन पुनिकीना। दो, हमारे साहित्य में प्राकृतिक रूपों और व्यापारों का प्रयोग प्रतीक रूप में बराबर होता आया है और ये विभिन्न रूप अलग अलग भावों से संबंधित रहे हैं। वैदिक साहित्य आरण्यक जीवन वाले ऋषियों के परिस्थिति प्रकृति उपकरणों के प्रतीक अपनाए हुए हैं। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि संस्कृत कवियों ने भी अपने प्रतीकों के लिए अधिकतर प्रकृति का ही आंचल पकड़ा है। एक, वही पर्यालोचन पृष्ठ 2। दो, नूर मोहम्मद इंद्रावती फाग खंड 5 छंद 14। हिंदी के आदि कवि भी संस्कृत के उपजीवी रहे हैं। वनवासी साधनात्मक रहस्यवादी सिद्धों ने अपनी साधना की अंतर्भूतियों की पृष्ठ संख्या 217। विरोधाभासात्मक अभिव्यक्ति के लिए वनों में सुलभ पर्वत, अहेरी, शबरी, मोरपंख, गुंजामाला आदि को अपनाया है। हिंदी के धार्मिक साहित्य में प्रतीकों की भरमार है। भारतीय संत कवि आत्मदृष्टा रहे हैं। आत्मदृष्टाओं द्वारा अनुभूत सत्य सर्वसाधारण की समझ में तभी आ सकता है जब वह सीधे सरल प्रतीकों द्वारा कह दिया जाए। संत कवियों ने किया भी यही है। अपने आध्यात्मिक चिंतन को सहज ग्राह्य बनाने के लिए उन्होंने प्रकृति के साथ साथ दैनिक जीवन से भी प्रतीक ग्रहण किए हैं। राजनारायण बिसारिया के शब्दों में दूध दूहना, हल चलाना, आखेट करना, मथना, कपास धुनना, मधुकरी मांगना, चरखा काटना, वस्त्र बुनना आदि दैनिक चर्याओं और दाम्पत्य प्रेम आदि जीवन के अन्य कार्य व्यापारों के प्रतीकों द्वारा संत कवियों ने ऊंची से ऊंची और गहरी से गहरी बात कह दी है। एक, यथा अस जुल्हा का मरम न जाना, जिन जग आनी पसारिन नाना, मही आकाश दो गाढ़ खंदाया, चांद सूरज दो नरी बनाया, सहस तार ले पूरन पूरी, अजहों बिनब कठिन है दूरी, कहहीं करीब कहहीं कबीर करम से जोरी, सूत कुसूत बिनय भल कोरी। दो, यहाँ जुलाहा कोरे जीव का प्रतीक है एवं मही और आकाश पिंड तथा ब्रह्मांड के, चांद और सूरज ईड़ा और पिंगला के एवं सूत कुसूत शुभ अशुभ कर्मों के प्रतीक हैं। संतों ने उलटवासियों में प्रकृति की विचित्र स्थितियों के माध्यम से भी सत्यों की व्यंजना की है। दादू की प्रेम व्यंजना ने प्रकृति का अधिक आश्रय लिया है और ये रूढ़ियों से भी अधिक मुक्त हैं। तीन, एक, श्री राज नारायण बिसारिया, हिंदी काव्य की प्रवृत्तियां दिल्ली, पृष्ठ 65। दो, बीजक, बम्बई, श्री वेंकटेश्वर प्रेस, संवत 2008, विक्रम रमैनी 28। तीन, श्री रघुवंश प्रकृति और काव्य, दिल्ली, सन 1960 ईस्वी, पृष्ठ 151। रहस्यवादी सूफी कवियों ने प्राकृतिक प्रतीकों का मार्मिक विधान किया है। वास्तव में विश्व के रहस्यवादियों ने अपनी रहस्य भावना की अभिव्यक्ति पृष्ठ संख्या 218 का माध्यम अधिकतर प्रकृति को ही अपना बनाया है। एक, सूफी काव्य में रहस्य भावना की अभिव्यक्ति में प्रतीक पद्धति अत्यधिक सहायक हुई है। वस्तुतः सूफी काव्य की विशेषता अलौकिक रहस्यात्मक तत्वों को अलौकिक प्रेम की विविध भावभंगियों और प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त करना है। हिंदी के सगुणोपासक कवियों ने भी प्रतीकों द्वारा दार्शनिक भावभूमि को स्पष्ट किया है। रीति युग में प्रतीक योजना ने दो रूप ग्रहण किए, एक तो कवि परिपाटी का और दूसरा रूपक योजना का। इन दोनों रूपों में कलात्मकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। कवि परिपाटी से उन मान्यताओं का बोध होता है जिन्हें परंपरा से कविगण सत्य मानते आए हैं। कवि ने ऐसे प्रतीकों का प्रयोग भावानुभूति को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया है, जो अपनी विशेषताओं के कारण किसी भावना के मूर्त स्वरूप की भांति स्वीकृत हो गए हैं। चातक प्रेम की अनन्यता का, हंस नीर क्षीर विवेक का और जल रहित मीन प्रेम की दृढ़ता का प्रतीक बनकर उन भावनाओं के प्रतिनिधि से बन गए हैं। अपने गुणों के कारण प्रकृति की अनेक वस्तुएं सौंदर्य का उपमान बनकर कवियों की लेखनी का आभूषण बनी हैं। मीन और मृग नयनों के उपमान बने हैं। भ्रमर और व्याल काले केशों की शोभा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। केहरी की कटी की समानता प्रेयसी की क्षीण कटी से की गई है और गंभीर चाल के कारण प्रेयसी को गजगामिनी कहा गया है। इन उपमानों का प्रयोग प्राचीन काल से आज तक के कवियों ने अनेक बार किया है और सौंदर्य की अभिव्यक्ति को स्थायी रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है। एक, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जायसी का पद्मावत, काव्य और दर्शन, दिल्ली 1963, पृष्ठ 305। आधुनिक काल में प्रतीक योजना ने छायावाद और रहस्यवाद की दार्शनिक भावधारा की अभिव्यक्ति में सहायता दी है। छायावादी तथा रहस्यवादी कवियों ने फूलों की कांति में असीम और चिरंतन शक्ति की मुस्कान का व्यक्त रूप देखा है और पृष्ठ संख्या 219 लहरों के आवर्तन प्रत्यावर्तन में प्रकृति के फैले हुए हाथों के दर्शन किए हैं, जो शाश्वत सत्य के दोनों कूलों का स्पर्श करते हैं। प्रसाद जी ने प्राकृतिक प्रतीकों का मार्मिक विधान किया है और पंत जी ने भी प्रकृति के अनेक पदार्थों में प्रतीकत्व की मार्मिक योजना की है। डॉक्टर संसार चंद्र के शब्दों में, छायावाद अपने उठे हुए सांस्कृतिक स्तर के कारण न परिवर्तित रूप में काव्य का प्रकृत्यात्मक प्रतीकवाद की ओर परिष्कृत प्रत्यावर्तन है। डॉक्टर संसार चंद्र, हिंदी काव्य में अन्योक्ति, दिल्ली 1960, पृष्ठ 73। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में मार्क्सवादी आदर्शों के होने के कारण उनमें हम विदेशी प्रतीकों का आयात पाते हैं।